أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هر دن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف ایک حجت. دعا کیجئے کہ آج کا دن ہمارے حق میں حجت بنے. شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دور قرآن 2025. اس میں سے آج ہم کریں گے جز نمبر 27، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگ دوڑ کرو. لکھے پارے کا تیم، پارے کا تعارف، اللہ کی طرف بھاگ دوڑ کرو. کچھ لوگ اپنے رویوں سے، اپنے مزاج سے دکھا رہے ہیں کہ وہ ففروا الی اللہ کی بجائے ففروا من اللہ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ان میں نہ کرے. وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو صرف اس دنیا کے لیے کھپانے کے لیے، ففروا الی الدنیا، ففروا الی المال، ففروا الی الفیم، شہرت، جو بھی لوگوں کے اندر کے بت ہیں نا، ان کو توڑ کر باہر لے آئیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ہے جی دوسرا تھیم آج کے پارے کا، کیونکہ ڈفرینٹ سوراز ہیں نا، تو ڈفرینٹ سبجیکٹس آئیں گے اس کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ بھی اس بارے میں آئے گا. اور عبادت کیا ہے؟ کہ بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا کیا مطلب ہے؟ قال فما خطبکم، تمہاری مہم کیا ہے؟ قال کے لفظ کے ساتھ جب بات شروع ہوتی ہے، فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کے مکالمے سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں بھی یہی پوچھا جا رہا ہے، تم بتاؤ تمہارے ارادے کیا ہیں. یعنی فما خطبکم کا لفظ کیا ہے؟ تم بتاؤ بھائی، کیا مہم لے کر جی رہے ہو؟ اگر ہم پچھلے پارے پہ ایک نظر ڈال لیں، تو پچھلے پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت پیغامات دیے. اور ان پیغامات میں سے ایک بڑا پیغام کیا تھا؟ زبان کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کسی کو بھی اپنے گمان کے تحت جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتا. پھر پچھلے پارے میں ہم نے جو چیز دیکھی تھی، وہ ایک دعا تھی، ربی اوزین یا نشکر نعمتک اللتی لکھی. یہ آپ کو پورے 2.5 گھنٹے میں سے 2-3 منٹ میں پورے پارے کا ایک رس مل رہا، کنسنٹریٹڈ، جو مرضی سے بعد میں بنائیے. ربی اوزین والی دعا ترجمے کے ساتھ یاد کر کے یہ بھی یاد رکھے کہ آپ نے رب سے نظم و ضبط مانگا. یہ جو لفظ ہے نا اوزین، ہی اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آرگنائز ہونا. مجھے تحمل دے، ضبط دے مجھ کو. پھر اسی طرح دعا مسلمان کی نیت بھی سنوارتی ہے، قسمت بھی اور آخرت بھی. یہ بھی ہم نے پچھلے بارے میں دیکھا. گناہوں کا کفارہ بننے والے کاموں میں سے ایک پیدل چل کر مسجد جانا ہے. درجات بلند کرنے والے کاموں میں سے کھانا کھلانا اور نرم بات کرنا بھی ہے. اسی طرح سے ایمان نہ لانے والوں کو ان کا تمام اجر دنیا ہی میں مل جائے گا. آخرت کی عظیم بھلائیوں سے یہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائیں گے. اسی طرح جو چیزیں استعمال میں نہیں آتی، انہیں اپنی زندگی میں نفاست سے دوسروں کو دینا سیکھیں. لوگوں سے خیر خواہی کا ارادہ ہو تو جان لیں کہ تبلیغ دین اور صبر لازم اور ملزوم ہے. آج بھی ہم پڑھیں گے ایک ایسے دکھی انسان کی کہانی آج کے بارے میں، کہ جس کو ڈانٹا گیا، جس کو جھڑکا گیا، ایک نہیں 950 سال کی جدوجہد تھی، اس کے باوجود وہ ڈانٹا گیا، وہ جھڑکا گیا. اور آج اس بارے میں ہم پڑھیں گے ابراہیم الذی وفا. یعنی رب، دیکھیے اگر آپ ایک بار آپ مس کر دیتے ہیں نا، اگلے دن آپ کا کنیکشن ہی نہیں ملتا، پکی بات ہے. پھر اسی طرح جنت میں گھر بنانے کے لیے بہت سے کاموں میں سے ایک 12 رکعت سنت موقعہ، यानी वो सुन्नतें जो नबी सल्लम ज़रूर पढ़ते थे, जिसकी बड़ी ताकीद है, उनको अदा करना। और हम सब जानते हैं, शुरू से हमने पढ़ी भी है, हमारे कल्चर में तो इसको फ़र्ज़ का दर्जा दे दिया जाता है। पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, 13 रकत, 17 रकत, 12 रकत, नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ वक्त पे फ़ौरन पढ़ लीजिए, सुन्नतों के लिए मैदान खुला है। इसी तरह दो अलग तरह की जिंदगियां गुजारने वालों का अंजाम भी अलग ही होगा। ये अब आपको इन अगले 3-4 पारों में हर दिन मैसेज मिलेगा कि क्या जन्नती और जहन्नमी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दुनिया की चीज़ें मिल भी जाएं तो कामिल इत्मीनान का बाइस नहीं बन सकती, इसलिए जन्नत की नेमतों की कोशिश और दुआ किया कीजिए। हिदायत के तालिब को हिदायत और तकवा दोनों ही नसीब होते हैं, अल्लाह हमें हिदायत का तालिब बना दे। रहम के रिश्ते काटने से बचें, वरना कतई रहमी आपको काट देगी। और आज काट के रखा हुआ कतई रहमी ने, भाई बहन, बहन भाई, और इसी तरह सगे रिश्तों से लोग कटे पड़े हैं। कुरान करीम जहन की तेज़ी और हिकमत का सरचश्मा है, जो इंसान के लिए नेकी की राह पर चलने और गुनाह की दलदल से बचना आसान कर देता है। दुआ करिए कि हम इसके ऊपर जमे रहें। नेक अमाल ज़ाया करने वाले कामों में बिदत, रियाकारी और एहसान जताना भी है। और फिर ख़ास तौर पे जो पिछले बारे में हमने सुलह हुदैबिया से सबक लिए, तो उसमें एक सबक ये लिख लीजिए, झुकना और हक से ज़्यादा किसी को दे देना। अगर खालिस अल्लाह के लिए हो तो इस सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और अल्लाह आपको वो इज्जत और बुलंदी देता है जिसका आप कभी तसव्वुर भी ना करते थे। किसी खबर को नशर करने से कबल सोच लें कि ये नेकियों में इजाफा करेगी या गुनाह में। ये सूरत हुजरात का मैसेज था। बेसनद बात या बिला तहकीक खबर आगे फैलाने से बयक वक्त आपकी साख और दूसरे की जात, दो लफ्ज लिख लीजिए, आपकी साख और दूसरे की जात को नुकसान पहुंचता है। आप सोचते अगले को नुकसान हो रहा है, नहीं, कभी किसी सास को सुना करें अपनी बहू की बुराइयां करें अपनी दोस्तों की महफिल में, उसको नहीं पता कि लोग उसकी बहू को कम बुरा कहेंगे, उसको ज्यादा बुरा कहेंगे, देखो कैसी सास है, वो बेचारी तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, और देखा था कैसे शक्लें बना रही थी। वो बंदा खुद बुरा लग रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता। बेसनत या बिला तहकीक बात कभी ना कीजिए, बहुत बड़ा बवाल होगा क़यामत के दिन। और फिर आखिरी बात, के जितना ईमान उतनी ताकत, और जितनी इताअत उतनी हिदायत। ये एक चेन रिएक्शन है, अल्लाह हमें इस पे चलने वाला बना दे। फिर आज के पारे के साथ जब हम इसके रब्त को जोड़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस पारे में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा की भी बात की है। ये पूरा पारा जो अब हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, आइए ज़रा इसके ऊपर एक उचटती सी निगाह डाल लें। तो लिखिए, पारा सूरत ज़ारियात आयत नंबर 31 से शुरू होता है, और इब्राहिम का किस्सा भी 31 में। ऐसा क्यों होता है? अगर इंसानों की लिखी हुई किताब होती है ना, बड़े अच्छे चैप्टर बंधे होते हैं, इसमें हेडर लगे होते हैं, ये होता वो होता, ये अल्लाह का कलाम है, ये तौफीकी है और तौकीफी है, इसलिए आप और मैं इसमें कोई चेंज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि अच्छा ये किस्सा इब्राहिम में पूरा कर दूँ 26वें पारे में। नहीं, जहाँ है वहाँ है। फिर चार किस्म की हवाओं की कैफियात आगाज में इस सूरत के, वजारियाती जरवा से लेके फल मुकस्सिमाती अमरा, यानी चार मखलूकात का तस्करा है। फिर मोमिनीन और मुत्तकीन की सिफात हैं, एक पूरा पैकेज है, बल्कि लिखिए, बहुत अहम बात है इस बारे की। हजरत मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके सहीफ़ों और इनकी दौर की सारी तालीमात का खुलासा आज इस बारे में आ रहा है, जिसमें आयत 19 से ऑनवर्ड आगे कुछ सिफात है कि जन्नत में जाने वालों की ये सिफात होंगी। फिर इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मुख्तलिफ कौमों के अंजाम बताए गए, तख्लीक बारी ताला के कुछ नमूने हैं, और फिर सूरत तूर शुरू होती है, पांच कस्में शुरू में, व तूर व किताब मस्तूर से लेकर आगे, और फिर उसमें इन सारी कस्मों के बाद बताया क्या जा रहा है कि क्यामत आने वाली है, और इस दुनिया में तुम जो जिंदगियां बसर कर रहे हो इसका तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर इसमें मुजरमीन का अंजाम भी है, मुत्तकीन का इनाम भी है। फिर एक जुमला लिखिए, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। जी, इलेक्शन के जरिए तो हर बंदा आगे आ सकता है, कोई टैलेंट है कि नहीं, तो अल्लाह के यहाँ इलेक्शन नहीं चलते, सिलेक्शन चलती है। फिर फ़राइज़ खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें सूरत पूरी होती है, और फिर आगे सूरत नजम, और नजम सितारे को कहते हैं, और सूरत का आगाज़ ही लफ्ज़ नजम से है, और सितारे की कसम खाने में हिकमत क्या है, ये इससे पता चलेगा। कुरान और हदीस की हुज्जियत, यानी हदीस की बेहमियत उतनी है जितनी कुरान की है। फिर खातमुल अंबिया का जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखना, वाकया मेराज का वो हिस्सा जो बैतुल मक़दस से आसमानों तक था, जिसको असल में मेराज कहते हैं, वो भी इस बारे में आप देखेंगे सूरत नजम में। फिर पहला सजदा, तरतीब नजूल से देखे पहली आयत सजदा जो नाजिल हुई थी वो इस सूरत में थी नजम में, और उसको जब आयत आई तो इतना सहर छा गया कि मुसलमानों के साथ मुशरिकीन ने भी सजदा कर लिया। फिर इसी तरह मुशरिकीन के गलत अकायद की तरदीद है, और एक बड़ी अहम बात जो सुहुफ इब्राहिम और मूसा में भी थी और आज भी है, नबी सल्लम की लाई हुई शरीयत में, क्या कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। देते देते रुक रहे हो तो सोच के रुकना, करते करते थक रहे हो तो सोचना, किसी के कहने पे शक में आ रहे हो तो दिल भर के सोच लो, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान आखिर में तुम्हारा होगा। और फिर आखिर में आयते सजदा, फिर आगे सूरत कमर, नोट कर रहे हैं आप लोग, तूर पहाड़ नजम सितारा और फिर कमर चांद, यानी कायनात की चीजों को लगवा बना बना कर अपनी तौहीद और क्यामत के आने पर बात करते हैं। फिर इसके शुरू में ही एक मोजज़ा है नबी सल्लम का, सिदाकत नबूवत, चांद का दो टुकड़े होना। फिर कौम नूह पर तूफान जो आया, कुरान करीम आसान है, पहली कौमों के वाक़यात, मुजरमीन और मुत्तकीन का अंजाम, और इसी तरह से ये सूरत इन्नल मुत्तकीन फी जन्नात व नहर, ये पैगाम देकर ख़त्म होती है। और आगे फिर खूबसूरत तरीन सूरत जिससे हमारे इंडो पाक कल्चर में तो बड़ी ही मोहब्बत की जाती है, वो है अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह के नामों में एक सूरत पीछे हम पढ़ चुके हैं फातिर, ये दूसरी सूरत आ रही है अर्रहमान, और रहमान का सबसे बड़ा इनाम कुरान। लफ्ज़ रहमान से सूरत शुरू हुई और साथ ही कुरान की बात करके बता दिया, कुरान सब के लिए, हर दिल में हर हाथ में, इनलाइटन द हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, अल्लाह करे गली गली कूचा कूचा इस कुरान के नूर को हम फैलाने वाले बन जाएं, ये गलियां ये लोग महरूम ना रह जाएं। जहां भी कुरान आएगा ना, वहां रोशनी आएगी, वहां घर सलामत होंगे, वहां बच्चों की इसलाह होगी और बहुत कुछ। और फिर इसमें वो आयत है जिसमें जिन्नो इंस को खिताब किया गया, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के पास अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। और फिर इसमें हर चीज़ फना है, कुल्लु मन अलैहा फान, व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और फिर जिन्नो इंस की बेबसी के भागना चाहो तो भागो लेकिन ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। फिर इसके आगे सूरत वाकया है, क्यामत के नामों में से एक नाम क्यामत मुराद है, टॉपिक भी इसका पूरा क्यामत ही है, क्यामत की हौलनाकी, फिर इंसानों के तीन मुख्तलिफ गिरोह, फिर अहले जन्नत के इनामत, अहले जहन्नुम के अजाब, फिर अल्लाह ताला की चार अजीम नेमतों का तذکرہ है इसमें, तख्लीके इंसानी, खेतियाँ उगाना, पानी की फराहमी और आग की नेमत। इन चारों को सही तरह इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदा होगा, वरना यही तुम्हारे लिए हलाकत का पैगाम बनेगी। फिर सदाकते कुरान, और फिर आखिर में मुनकरीन बास बादल मौत की तरदीद, और उसके बाद फिर आखिरी और खूबसूरत तरीन सूरत इस बारे की, सूरत हदीद लोहा, जिसका नाम लोहा हो, आप बताइए उसके अंदर पैगाम क्या होगा। अल्लाह ताला के कुछ यूनिक नाम, अल अव्वल अल आखिर अल जाहिर अल बातिन, आगाज में इसका तस्करा है। फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह की रग़बत है कि तू बचा बचा के न रख इसे, ये जो चीज़ें हम अल्लाह से बचाते हैं वो बचती कोई नहीं, या उसको फफूंदी लग जाती है फेंकना पड़ता है, या वो कहीं गिर जाती है या चोरी हो जाती है, तो अल्लाह कहते इससे के पहले तुम्हारी सब चीज़ें गुम जाएं, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएं, इनको अल्लाह के हाथों में देकर सिक्योर कर लो। आप देखिए कि अल्लाह को जब कोई चीज़ देते हैं ना तो कितनी महफूज हो जाती है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शादी हॉल में एक बच्ची अपने जेवर का बैग ले ले के फिरती है और मज़ा भी नहीं आ रहा, इतने में दूर से देखा अम्मा बैठी हैं, जाके वो पोटला कहती है अम्मा इसको संभाल के रख ले, कीमती चीज़ें हैं घर पे नहीं रखा। शादी वाला घर था, पता नहीं क्या हो। अब वो जो अम्मा ने तो रखना है वो आप रख सकती थी, अम्मा ने तो उस बुजकी को छोड़ना नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। बस आपका तो शुक्र है। कोई औरत है अपने बच्चे का कहते गुगु गुगु को पकड़ के फिर रही है, एड़ी भी चुभ रही है, काम वाले कपड़े भी चुभ रहे हैं, जेवर भी चुभ रहा है, और वो भी रो रहा है बेचारा, अम्मा भी खप रही है, उसको क्या लगे अम्मा के ये चुभते कपड़ों से। इतने में दूर से देखा तो वो बड़ी बाजी बैठी है, कहती है पकड़ो इसको, वो कहते जाओ तुम एंजॉय करो। बस ये दो मिसालें ले लें, बहुत छोटी हैं ये। ये तो एक वक्ती किसी प्रोग्राम को एंजॉय करना है ना। दुनिया में आज सिर्फ वही लोग एंजॉय कर रहे हैं जो अपने सारे मामले अल्लाह के हाथ में देते हैं। इस तरीके से भी जब आप अल्लाह के हाथों में अपने आप को और अपनी चीज़ों को देते हैं ना, तो वो गमी को नहीं, वो कहते हैं ना बीवी ना जोरू ना जाता, अल्लाह से नाता है ही कुछ नहीं, तो फिक्र किस बात का। हम का हिसाब करते फिर कितनी ज़कात है हमारे सर पे भाई, ज़कात क्या, सारे ही ज़कात है सब उसका, जो खा लिया पी लिया। वो अब तीन चीज़ें हदीस में आती हैं, जो भी एक इंसान खा लेता है वो उसका, बाद में कुछ घंटे बाद जिस्म से गंदगी बन के निकल जाता है, जो पहन लिया फिर उसके बाद वो चिथड़े बन जाते हैं, या अपने हाथ से पकड़ आगे के पोटली में डाल दिया। ये खुशकिस्मत लोग हैं, उनके सर पर एक कर्ज नहीं, उनके सर पर एक ज़कात नहीं, उनके सर पर कुछ नहीं, रखा ही कोई नहीं अपने नाम पे, बस ज़रूरियात है जितनी ज़िंदगी, और वो भी कूते ला ये मौत। जब बंदा अल्लाह तआला के साथ डील करे ना, तो फिर फजूल खर्चियाँ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने कह दिया कि अल्लाह मैं सिर्फ अपनी ज़रूरियात का लूंगा। वो किसी को दे भी नहीं सकता ज़्यादा, वो अपने नाम पर कोई शो नहीं मार सकता कि इतने हजारों मैंने फलां को दिए, उसका है ही नहीं। उसने तो अल्लाह से ये वादा किया था कि अल्लाह बस जिससे मेरा वक्त इज्जत से गुजरता है, दैट्स इट। फिर इसके बाद सहाबा कराम के दरमियान जो फ़र्क मरातिब है ना, वो इस बारे में आपको दिखेगा सूरत हदीद पढ़ते हुए। अल्लाह करे हम वहाँ तक पहुँच जाएँ, और फिर हमारे वक्त में भी अल्लाह बरकत दे। फिर मोमिनीन और मुनाफिकीन का तذकरा पुल सरहद पे खड़ा करके, यौम तरल मोमिनी नवल मोमिनात यस अनूर हम बई ना ए दीम पबी ए मानिम। अल्लाह हमारी नेकियों का नूर दूर दूर तक फैला दे, जहाँ तक बंदे की नेकियाँ पहुँचेंगी ना वहाँ तक रोशनी होगी। आज हम इस जगह पे बैठे हैं, ये ज़मीन के टुकड़े कितने खुशबख्त हैं, इसका नूर कुरान के ज़रिए कहाँ कहाँ जा रहा है आपको तो इसका अंदाज़ा भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन ये कह सकती हूँ कि रब्बना तकबल मिन्ना। ये नसीब है, घरों के भी नसीब होते हैं, जगहों के नसीब होते हैं, मस्जिदों के नसीब होते हैं, और हर चीज़ का नसीब है। बस दुआ करें कि हमारा उसमें हिस्सा डले, अपने घरों को, अपने ज़ात को। आपके कपड़ों के भी नसीब है, आपकी गाड़ियों के भी नसीब है, आपके सेलफोन का भी नसीब है। किसी की कोई चीज़ एक आती आती टूट जाती है, एक की आती है वो 10 साल तक चलती रहती है, नसीब है। जैसे एक बच्चा पैदा होते ही आंख बंद हो जाती है उसकी, और एक को लब जा 60 70 80 साल 90 अर्जल उम्र तक जीता रखता है, ये उसके फैसले हैं। लेकिन दुआ किया करे कि अल्लाह हमारी चीज़ें ज़ाया ना हो, हमारी ये चंद 20 25 30 40 साल की ज़िंदगी जो रह गई है ये ज़ाया ना हो। फिर इसके बाद अम्बिया कराम की बेसत का मकसद, और आखिर में फिर रहबानियत कहाँ से शुरू हुई। तो ये खूबसूरत सा मौजू है जो आज हमारा, बड़ी मोहब्बत से नबी सल्लम को सोच के दुरूद शरीफ पढ़िए, कि जो ना होते, जो अपने दिल पर इतना प्रेशर ना लेते, तो ये कुरान इतना खूबसूरत हमें ना मिलता। ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह के नबी ना होते, और अगर अल्लाह के नबी फ़फ़िरु इलल्लाह ना होते, और अगर अल्लाह के नबी इब्राहिम की तरह अल्लज़ी वफ़ा ना होते और अपने कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते, तो क्या ये कुरान हम तक पहुंचता? आज हमारा क्यों नहीं हुआ? आज कहते हैरत है तुझे नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, कोई कहता है नमाज पढ़िए इससे पहले कि आप पर नमाज पढ़ी जाए। मैं अक्सर सोचती हूँ अपने साथ लेकर, लोगों को देकर, जिंदगियों के उनके अपने अपनी एज के लोगों को, अपने तर्ज के लोगों को, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, मैं कहती हूँ अल्लाह इनको हर चीज़ का वक्त मिल जाता है, इसलिए इनको कुरान का नहीं मिलता। लफ्जी तर्जमा इनको नहीं याद करना, तजवीद इनको ठीक नहीं करनी, इनको नहीं करना, हैरत की बात है। बिलीव मी इट्स वेरी स्टनिंग। कभी सोचे ना हम हैं क्या, क्या मसरूफियात है, कर क्या रहे हैं, दुनिया में क्या चांद चढ़ा रहे हैं। चले कोई दुनिया की सदारत वजारत होती हमारे ऊपर, एक मुल्क का कोई बोझ होता, कोई हमारे सर पे भी कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम होते हैं, मान लेते कि बिजी बहुत हैं, कोई नासा कंपनी को हम चला रहे हैं, कोई बड़े बड़े दुनिया कैसे काम है, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम ले रहे हैं, कुछ भी तो नहीं, वही घर और बच्चे ही नहीं निबड़ रहे हमसे। और वो कौन सा मच्छर चलाते हैं, उसमें भी हर वक्त हमें गुस्सा ही चढ़ा होता है, उसमें भी हम हरकत उलझे ही रहते हैं। तो फ़फ़िरु इलल्लाह, चलिए अल्लाह के नबी पे दुरूस्त पढ़ते हैं मोहब्बत और प्यार से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। इस बरकत के कॉन्सेप्ट को भी जहन में रखिए। और सिराज मुनीरा, ये सिराज मुनीरा की हस्ती थी कि जिसकी वजह से हमें समझ बूझ मिली, ये कुरान खुला, जिन्होंने मक्का से मदीना और बीच में ताइफ और इर्द गिर्द की जगहों को मुनव्वर किया, और अपनी ज़ात पे तकालीफ सहते सुनते ये कुरान की अमानत हमारे हाथों में दी। बड़े सलीके से ये कुरान नबी ने हमें दिया, लेकिन आज हम इस कुरान का पूरा हक अदा नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं कि मोहम्मद अरबी, उन्होंने इस तूफानी कशमकश के बीच में क्या किरदार अदा किया। पीछे हमने देखा था कि अपने भी खफा, मुझसे बेगाने भी नाखुश, काफिर हाथ धोकर प्यारे नबी और साथियों के पीछे बढ़े रहे। चुनाचे वो बड़ी बेदर्दी से सताते, गालियां देते, पत्थर बरसाते और अपनी गंदी हरकतों की ऐसी ऐसी नुमाइश करते कि शराफत ने तो कभी तो आंखें बंद कर ली और कभी कानों में उंगलियां दे ली। अल्लाह के नबी की दो बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसुम, बोलिए रदी अल्लाह अन्हुमा, ये उतबा और उतैबा के साथ ब्याही जा चुकी थी जब अबू लहब के बेटे थे। यानी आप यहाँ ये भी समझे कि अबू लहब अल्लाह के नबी की दो बेटियों का ससुर भी था। उतबा और उतैबा बाप की तरह इस्लाम के कट्टर दुश्मन साबित हुए। खैर, एक ज़माना तो ऐसा गुजरा कि वो मुखालफत करते रहे करते रहे, लेकिन अबू लहब को इस पे भी तसल्ली ना हुई और उसने जुदाई करवा दी। अब रिवायात से क्या पता चलता है कि रुखसती हुई कि नहीं हुई, सिर्फ निकाह था। हम यही कह सकते हैं कि नबी के दिल पर जितने पहले नश्तर पड़ चुके थे बचपन से जवान होने तक, उसमें दो और तीर लग गए, दो ब्याही हुई बेटियां घर आ गईं दीन की वजह से। चूंकि ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहता था, इसलिए इसका वजूद आपके लिए एक मुस्तकिल दर्दे सर था। हज एक आए दिन वो आपके दरवाजे पे कूड़ा करकट फेंक देता और कभी गलाजत भी डालकर चला जाता। और उसकी बीवी उम्मे जमील, वो कहाँ कुछ कम थी, ये आपके रास्तों में कांटे बिछाया करती थी। जिन रास्तों से आप सुबह में गुजरते थे वहां कांटे बिछाती थी। अल्लाह के नबी को देखिए, दुश्मनों का आपके साथ ये बर्ताव था, मगर इस पर भी आपने शराफत का दामन कभी हाथ से ना छोड़ा और ना इनकी बदतमीजी का जवाब दिया। इनकी बदतमीजी का जवाब हमेशा आली जर और खुश्क अखलाकी से दिया। वो सब कुछ करते रहते और आप देखा करते और सब्र करते, और कभी परेशान हो जाते तो सिर्फ इतना फरमाते, आले मुतल्लिब, पड़ोसी के साथ ये कैसा सलूक है, यानी ऐसा करते हैं, ये सोच है। और फिर कुरैश तो आपके कत्ल का फैसला कर ही चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब सब आपके साथ हैं और आप पर जान देने को तैयार हैं, तो वो इससे सटपट आए। फिर उनकी हिम्मतें पस्त हुई, हौसले टूटे और उन्होंने ये नापाक इरादा दिल से निकाल दिया। लेकिन चोटें करने और फप्तियां कसने से वो फिर भी बाज ना आए। वो कहते ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल यही हाल था, कहीं रास्ते में आपको पा जाते या साथियों में देखते तो जोर जोर के कह के लगाते। कभी कहते, क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान से आज कुछ नहीं आया, यानी सुनाओ भाई कोई नई ताजी, कोई खबर है। कभी कहते, क्या और कोई नहीं था कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल बना दिया, ये भी लोगों को चुभता है। तुम क्यों रसूल बने, यहाँ तो एक से एक मौजूद था तुमसे ज्यादा होशियार भी और मालदार भी। कभी तालियां पीटते, कभी सीटियां बजाते, क्या आप आगे से बात ना कर सके। कमजोर और नादार मुसलमानों को देखते कह के लगाते, आंखें मारते। अल्लाह ने ये भी इनके एक्शन कुरान में नकल किए, इशारे करते हुए कहते, ये लोग तो जमीन के बादशाह हैं, देखना जल्दी ये रोम और ईरान को भी ताराज कर देंगे। और खास तौर पे अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन, इस्लाम दुश्मनी में एकदम दीवाना था और शराफत और वकार से बिल्कुल ही बेगाना था। आपके लिए हर बुरा काम इसे गवारा था, जहां आपको पाता वो आपको कोसता और औरों को भी आपके खिलाफ उकसाता। आप नमाज पढ़ते तो कुछ ओबाशों को साथ लेकर खूब हंसी मजाक उड़ाता, और दावत और तबलीग का काम करते तो गुंडों को जमा करके कह कहे लगाता और बार बार लोगों से कहता, नाउज़ुबिल्लाह, सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद के पुर्जे उड़ा दो। उसकी अरबी के लफ्ज़ों को देखे ना, तो अल्लाह के नबी की जान के भी दर पे था, इज्जत के दर पे भी था, आपकी रेपुटेशन के भी दर पे था। कहने लगा एक दफ़ा इसको राह से ख़त्म कर लो, फिर चैन की हंसी बजाओ। एक दिन इसने अपने साथियों से कहा, खुदा की कसम कल एक पत्थर लेकर बैठूंगा, इतना भारी पत्थर कि उठाए ना उठे, और जो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएगा इसका सर पीस कर रख दूंगा। नाउज़ुबिल्लाह, फिर चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या छोड़कर अलग हो जाओ, आले मनाफ भी जो कुछ करेंगे देखा जाएगा। यानी खानदानी तासुब, खूब जोश चलाते होते, तौबा तौबा, हम लोग साथ छोड़ सकते हैं, इस तरफ से आप बिल्कुल बेगम रहें और जी में आए करिए, यानी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप गलत भी के बेधड़क काम कीजिए, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। खैर, अगले दिन सुबह हुई, अबू जहल ने एक भारी पत्थर लिया, काबा के पास इंतजार में बैठ गया, करीबी और साथी भी बैठ गए। हर रोज की तरह अल्लाह के नबी आए और रुकने यमानी और हिजरे अस्वद के दरमियान खड़े हुए और नमाज में मसरूफ हो गए। बस कहते हैं कि ये चाश्त का वक्त, अल्लाह के नबी वहां आते होते थे। खैर, जू ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। अब साथी देख रहे हैं चुपके चुपके कि अब आगे मोहम्मद क्या रिएक्ट करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं पता कि मोहम्मद को जरूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि रब्बे मोहम्मद देख रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना अजीब मंजर होगा, जरा सोचिए, एक दुश्मन खुदा इस सर को कुचलने जा रहा है, जो सर अल्लाह के सिवा कभी किसी के आगे नहीं झुका, जो अल्लाह ताला के हुक्म पर वस्जुद वक्त तरीब की फॉर्म में है, और उस वजूद को मिटाने जा रहा है अबू जहल, जिसका निगेबान खुद अल्लाह ताला। इतने में ना देखा कि अबू जहल ऐसे पलट कर पीछे आया जैसे आगे से किसी चीज ने उसको रोका, और जब वापस आया चेहरा उतरा हुआ, आंखें चढ़ी हुई है और हाथ में पत्थर जूं का तू है। साथी हैरान हुए, बढ़कर बोले, अरे अबुल हकम, क्या हुआ क्या हुआ? अबू जहल हाँफते हुए बोला, अरे तुमको नहीं दिखता, सामने एक आग का अलाव है, अगर मैं जरा भी और आगे जाता तो मैं जलकर भस्म हो जाता, राख हो जाता। ये सुनकर वो और हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने नहीं देखी, वो देख ही रहे थे, आग तो कोई थी नहीं, वो सिर्फ अबू जहल को देख रही थी। उन्होंने सोचा लगता है कि इसका इरादा बदल गया, अब इसका ये काम करने की हिम्मत नहीं या जी नहीं, हीले बहाने कर रहा है। हर एक साथी तो जोश से बेताब होकर कहने का, ठहरो लाओ। फौरन इसने वही पत्थर उठाया और इसी इरादे से आपकी तरफ बढ़ा, मगर कुछ ही दूर गया कि उसके भी कदम रुक गए। फिर वो लौट आया, लोगों ने देखा इसका भी चेहरा उतरा हुआ है। आप अल्लाह के नाम पे निकले तो सही, फिर कोई आपको उंगली लगा दे, कभी नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला की मदद थी जो नबी सल्लम के साथ ये सारी जिंदगी रही, असमत अंबिया भी इसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने आपके दुश्मनों को खुद ही अपनी डाल दी, जो आपकी तरफ जाता खौफ से अपनी निगाहों को पथराया हुआ पाता, और अल्लाह ने दुश्मनों की सारी साजिशों को थरा का थरा रख दिया। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये बार बार हुआ, होता ही रहा। तो आज आप और मैं इस सेशन के साथ अपने आप को चेक करेंगे, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक है हमारा?